नैव सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः कोई दोहराना चाहे यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियप्यर्देश तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः और कोई यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता शब्दार्थ यदा जब संहरते समेट लेता है च भी अयम यह कुर्मः कछुआ अंगानी अंग इव सदृशः सर्वशः एक साथ इन्द्रियाणि इन्द्रिया इन्द्रियार्थेभ्यः इन्द्रिय विषयों से तस्य उसकी प्रज्ञा चेतना प्रतिष्ठितः स्थिर अनुवाद तथा तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की अनुवाद जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है वह पूर्ण चेतना में दृढ़तापूर्वक स्थिर होता है। मेरे पीछे पीछे एक बार अनुवाद दोहराइए। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है वह पूर्ण चेतना में दृढ़तापूर्वक स्थिर होता है। तात्पर्य किसी योगी भक्त या आत्मसिद्ध व्यक्ति की कसौटी यह है कि वह अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में कर सके, किंतु अधिकांश व्यक्ति अपनी इंद्रियों के दास बने रहते हैं और इंद्रियों के ही कहने पर चलते हैं। यह है उस उत्तर इस प्रश्न का कि योगी किस प्रकार स्थित होता है। इंद्रियों की तुलना विषैले सर्पों से की गई है। वे अत्यंत स्वतंत्रतापूर्वक तथा बिना किसी नियंत्रण के कर्म करना चाहती हैं। योगी या भक्त को इन सर्पों को वश में करने के लिए एक सफेरे की भांति अत्यंत प्रबल होना चाहिए। वह उन्हें कभी भी कार्य करने की छूट नहीं देता। शास्त्रों में अनेक आदेश हैं, उनमें से कुछ करो तथा कुछ न करो से संबंध है। जब तक कोई इन करो या न करो का पालन नहीं कर पाता और इंद्रिय भोग का संयम नहीं बरतता है, तब तक उसका कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो पाना असंभव है। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कछुए का है। वह किसी भी समय अपने अंग समेट सकता है और पुनः विशिष्ट उद्देश्यों से उन्हें प्रकट कर सकता है। इसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की इंद्रियां कभी केवल भगवान की विशिष्ट सेवाओं के लिए काम आती है, अन्यथा उनका संकोच कर लिया जाता है। अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा है कि वह अपने इंद्रियों को आत्मतुष्टि में न करके भगवान की सेवा में लगाए। अपनी इंद्रियों को सदैव भगवान की सेवा में लगाए रखना कुर्म द्वारा प्रस्तुत दुष्टांत के अनुरूप है, जो अपनी इंद्रियों को समेटे रखता है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सागणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितां च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्युषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी नाधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। यदा संहरते चायं कुरुमुङ्गानिव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञां प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़तापूर्वक स्थिर होता है। तो भगवद्गीता में अर्जुन भगवान को पूछते हैं स्थित प्रज्ञ के बारे में। अर्जुन पूछते हैं स्थित प्रज्ञ से क्या भाषा समाधिस्य केशव चितदि किम प्रभाषेत किम आसित व्रजेत किम। अर्जुन पूछते हैं हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं, वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता और चलता है। और इसका उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवा आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्य तस् दोचते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्र तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित पक्ति कहा जाता है। और उसके आगे के श्लोक में बोलते हैं, दुखेश अनुदिग्मनहा सुखेशु विगत स्पृहा वितराग भया क्रोधा सितधीर मनी रुच्यते। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। और फिर कहते हैं, यह सर्वत्रानि तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभि नंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है वह पूर्ण ज्ञान में स्थित होता है, स्थिर होता है। और फिर आज का श्लोक जो भगवान बता रहे हैं कि इंद्रिय संयम के बारे में भगवान बोलते हैं कि जो मनुष्य अपने इंद्रियों को संयमित करता है, अपने इंद्रियों को इंद्रिय विषय से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। लेकिन परपट में प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में कि अधिकांश व्यक्ति अपने इंद्रियों के दास बने रहते हैं और इंद्रियों के ही कहने पर चलते हैं और यही हमारी स्थिति है। हमारी पांच कर्मेंद्रियां होती हैं, पांच ज्ञानेंद्रियां होती हैं। पांच कर्मेंद्रियां कौन सी होती हैं? हाथ, पैर, जीवा और स्किन। हाँ, और ठीक है। और ज्ञानेंद्रिया कौन सी होती है? ओके। और उनके इंद्रियों के विषय पांच रहते हैं, कौन से रहते हैं? ठीक है। तो हमारी पांच कर्मेंद्रिया रहती हैं, पांच ज्ञानेंद्रिया रहता है और पांच उनके विषय रहते हैं। लेकिन क्या होता है कि हमारी इंद्रियां जो चाहती है हम उधर ही हमारे मन को लेके जाते हैं। जैसे कि छठे अध्याय में 34 श्लोक में जो हमारे शरीर की जो तुलना की गई है एक रथ, रथी और उसके घोड़े से साथ की जाती है, उसका श्लोक इस प्रकार है कि आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमे वच बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मना प्रगमे वच इंद्रियाणि हया नाहुर विषयास्तेषु गोचारन आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ते चाहुर मनीषिणः। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है, बुद्धि इसका सारथी है, मन लगाम है और इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख तथा दुख का भोगता है, ऐसा बड़े बड़े चिंतकों का कहना है। तो यहां पर उपमा दी गई है हमारे शरीर की कि यह शरीर एक रथ की तरह है और हम इस शरीर में आरूढ़ हैं और बुद्धि इसका सारथी है और जो घोड़े हैं ना, हमारी पांच इंद्रिया इसके घोड़े हैं। जो कान, नाक, जीवा, आंख, ये जो घोड़ों की तरह कार्य करती हैं। अगर सपोज हर एक घोड़ा अपनी अपनी दिशा में चलना चालू करे, उसको कहीं दिशा से नियंत्रित ना किया जाए और उसको अलग अलग दिशा में वो लेके जाए तो रथ की क्या हालत रहेगी? कहीं जा पाएगा वो? श्री राधा राजबिहारी भगवान की, श्री गौर निताय की, श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की। अभी भगवान को भोग लगेगा तो पट बंद रहेंगे, 8:30 बजे फिर से पट खुलेंगे तो शयन आरती होगा। तो कृपया आप इस प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। भगवान के दर्शन करने तो भगवान के बारे में सुनेंगे तो और भी अच्छे से दर्शन हो सकेंगे आपको। तो अगर पांच घोड़े हैं, पांच इंद्रियां, पांच घोड़े के रूप में बताया गया है, अगर वो अलग अलग दिशाओं में हमें खींचना चाहे रथ को, तो रथ कहीं नहीं जाएगा, टूट जाएगा। इसलिए इंद्रियों को संयमित करना बहुत ही आवश्यक है। तो इंद्रियों को यहां पे बताया गया है कि कछुआ जैसे अपने अंगों को उस खोल के भीतर कर लेता है। आपने कछुआ देखा है? हमारे यहां पे भी शिवजी के मंदिर के बाजू में एक लेक पॉन्ड है, वहां पे कछुए हैं बहुत सारे। तो आप देखें उस कछुए को अगर कुछ खतरा महसूस होता हो ना, तो उसके पूरे अंगों समेट लेता है, और उसका कवर इतना मजबूत होता है वो कोल कि उसको आप कुल्हाड़ी से भी काटने का प्रयास करो टूटेगा नहीं। पुराने जमाने में कुछ बड़े बड़े कछुए अगर मिल जाते थे, उसका ऊपर का जो खोल था ना, उसको एक ढाल के लिए यूज करते थे, उससे ढाल वगैरह बनाते थे। तो वो जो कछुआ जो होता है, जैसे उसको कुछ डेंजर मालूम होता है तो अपने अंगों को समेट लेता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे इंद्रियों को जहां जाना चाहे वहां दौड़ने देते हैं। इसलिए हम हमेशा उद्विग्न रहते हैं, क्योंकि हमारे इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है। और कुछ दार्शनिक ऐसे होते हैं कि जैसे हमने अभी यहां पे बताया गया कि हमको इंद्रियां संयमित करनी चाहिए, तो क्या हमें समय सब कार्य बंद कर देने चाहिए? भौतिक शरीर है तो भौतिक शरीर के कार्य तो होंगे ना, तो क्या बंद कर देने चाहिए? लेकिन कुछ दार्शनिक कहते हैं कि उनका मानना है कि सब कार्य बंद कर देने चाहिए, क्योंकि ये जो शरीर है मैटर से बना है, पंचमहाभूतों से बना है, वो पंचमहाभूत में जब विलीन हो जाएगा, सब कार्य बंद कर देंगे, पंचमहाभूत अपने अपने इसमें रिजॉल्व हो जाएंगे, तो हमें कुछ डिस्ट्रेस महसूस नहीं होगा, कुछ दुख महसूस नहीं होगा। लेकिन ये गलत है, क्योंकि ये धारणा ही गलत है कि हम शरीर है। हम खुद को शरीर मान बैठे हैं, लेकिन हम शरीर है क्या? क्योंकि जैसे मैं कुछ करता कहता हूं कि ये मेरा पेन है, तो इट्स बिलोंग्स टू मी, वो पेन मैं नहीं हूं, राइट? वैसे ही हम बोलते हैं कि ये मेरा शरीर है, तो इट्स बिलोंग टू मी, तो मैं नहीं हूं वो शरीर। शरीर और हम भिन्न है, अलग है। लेकिन कलयुग में शरीर अभिनिवेश ज्यादा रहता है, इसलिए खुद को हम शरीर मान बैठते हैं, और शरीर को मान बैठने के कारण से ही हम इस जगत में दुख का, पीड़ा का जो है अनुभव करते हैं। लेकिन ये मनुष्य जो शरीर है, ये इसको बोला गया है सुलभम सुदुर्लभम, नृदेहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्व तेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मः। ये मनुष्य शरीर बहुत सुलभ है, लेकिन बहुत सुदुर्लभ ही है। अगर इसको हम अच्छी तरह से इसका उपयोग ना करें, जैसे ऋषभ देव अपने पुत्रों को उपदेश देते हैं, श्रीमद् भागवतम कैंटो फिफ्थ में ऋषभ भगवान कहते हैं, नायम देहो देह भाजान रोके कष्टाम काराम अर्हते विडभुजांगे तपो दिव्यम पुत्र कायन सत्वम शुद्धेद्यादस्मत ब्रह्म सौख्यम तमनंतम। भगवान ऋषभ देव अपने पुत्रों से कहते हैं, हे पुत्रों, इस संसार में समस्त देहधारियों में जिसे मनुष्य देह प्राप्त हुई है, उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए दिन रात कठिन श्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो मल खाने वाले कुकर सुकर भी कर लेते हैं। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का दिव्य प्राप्त करने के लिए वो अपने आपको तपस्या में लगाए। ऐसा करने से उसका हृदय शुद्ध हो जाता है, और जब वह इस पद को प्राप्त कर लेता है तो उसे शाश्वत जीवन का आनंद मिलता है, जो भौतिक आनंद से भी परे है, जो अनवरत टिकने वाला है। शाश्वत आनंद प्राप्त होता है, जीवन का आनंद। यहां हम कुछ भी करते हैं तो हम किस लिए करते हैं? आनंद प्राप्त करने के लिए, सुख प्राप्त करने के लिए। कोई तो नहीं चाहता ना मुझे दुख हो। दुख प्राप्ति के लिए कुछ कोई करता है क्या? सब करते हैं सुख प्राप्ति करने के लिए। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा जो स्वरूप है सच्चिद आनंदमय है, इसलिए हम हमेशा आनंद की खोज में रहते हैं। लेकिन हम खुद को इस शरीर मान बैठने के कारण खुद को दुख अनुभव करते हैं। लेकिन ऋषभदेव कहते हैं कि ये जो मनुष्य शरीर है ये गधों की तरह काम करने के लिए नहीं है सुबह शाम। देखो चार चीजें तो जानवर भी करते हैं और हम भी करते हैं, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, वो भी सोते हैं, हम भी सोते हैं, उनको भी डर लगता है, हमको भी डर लगता है, वो भी संतति उत्पन्न करते हैं, हम भी संतति उत्पन्न करते हैं। तो फिर उनमें हमें फर्क क्या है? वो सोता है वो गहरी नींद में और हम भी सोते हैं डनलप की गद्दी पे, सुख नींद का जो सुख है उसको भी सेम है, हमको भी सेम है, डिफरेंस क्या है? कुछ नहीं। तो जानवरों की जीना हमें नहीं चाहिए, हमें मनुष्य देह प्राप्त हुआ है भगवत प्राप्ति के लिए, तो उसी उद्देश्य को कैसे प्राप्त किया जाए यह हमारा ध्येय होना चाहिए। तो क्या फिर प्रभु जी हम सब घर बार छोड़ दे अभी, आपकी तरह मंदिर में आके रहना चालू कर दे? ऐसा नहीं है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी चीज कर रहे हैं, उसको बस आपको स्पिरिचुअलाइज करना है। जैसे महाभारत के युद्ध के पूर्व अर्जुन ने बोला था ईश्वर को, भगवान को, कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध करने से साफ मना कर दिया था। फिर भगवान ने उसको पूरी भगवद गीता बताई, फिर उसके बाद वो क्या बोला, करिष्ये वचनम, तो फिर युद्ध करने लगा। तो डिफरेंस क्या हुआ? पहले तो बोला था नहीं करूंगा, लेकिन जैसे गीता सुन लिया चमत्कार हो गया, करूंगा युद्ध करूंगा। तो उसने उसके कार्य को जो युद्ध कर, वो क्षत्रिय था, क्षत्रिय का धर्म होता है युद्ध करना, तो उसने उसके कार्य को स्पिरिचुअलाइज कर लिया, भगवान के आज्ञा अनुसार किया उसको। इसलिए हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसको हमें स्पिरिचुअलाइज करना है। लेकिन आजकल क्या है, लोगों की स्थिति ऐसी है कि बस खाओ पियो एंजॉय करो, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ नहीं चाहिए, है ना? सब लोग यही चाहते हैं, कुछ नियम कानून ना हो, बस एंजॉयमेंट हो, है कि नहीं? लेकिन पॉसिबल है क्या? अगर आपको एक मर्सिडीज दी जाए और आपको बोले ये गाड़ी आज से आपकी है, आप ड्राइव करो, और आपको ट्रैफिक के कोई रूल फॉलो करने की जरूरत नहीं है, लॉन्ग ड्राइव पे चले जाओ आप, कहीं ट्रैफिक सिग्नल पे रुकने की जरूरत नहीं है, कोई नियम फॉलो करने की जरूरत नहीं है, तो आप अच्छे से उस ड्राइव का आनंद ले पाएंगे? क्यों ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे? कितने लोग बोलते हैं कि सोचते हैं कि हम ले पाएंगे, सोचते ही नहीं है प्रभु जी हम लोग। जब अगर आप ट्रैफिक के रूल फॉलो नहीं करेंगे तो कोई ना कोई आपको ठोक देगा आपकी गाड़ी को, आप उस ट्रैफिक का, उस ड्राइव का आनंद नहीं ले पाएंगे। इसलिए नियम बहुत जरूरी है हमारे जीवन में, नियम बहुत जरूरी है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम कोई रूल्स रेगुलेशंस फॉलो ना करें और हम सिर्फ आनंद उपभोगे, ऐसा नहीं हो सकता है। बिना नियम के सृष्टि नहीं चलती है। मैं अभी सुन रहा था कि एक राजा के पास एक साधु आया और उसने बोला कि राजा को कि आप कुछ वर मांगो। तो राजा बोला साधु से क्या वर मांगे, तो उसने अपने मंत्रियों से कुछ मंत्रणा की, सलाह ली, तो इस साधु से क्या वर मांगा जाए। तो एक मंत्री बोला आप अपनी प्रजा के हित के लिए वर मांगो, आप उससे बोलो कि मेरे प्रजा जो भी चाहे वो इच्छा पूरी हो जाए, सब खुश हो जाएंगे। अब सबकी इच्छा पूरी होने लगी तो सब खुश होंगे कि नहीं, है कि नहीं? मंदिर क्यों आते हैं लोग, भगवान ये दो वो दो मेरी इच्छा पूरी कर दो, है ना? अपनी इच्छा कामनाओं के लिए इच्छा कामना पूर्ति के लिए हम आते हैं ना, तो सबकी इच्छा पूरी हो जाए तो सब सुखी हो जाएंगे। राजा को लगा ठीक है, बात तो सही है, लेकिन एक बूढ़ा मंत्री था, वो कुछ बोल नहीं जा रहा था, सलाह देने वाला था। बोले नहीं नहीं नहीं, आपकी सलाह की जरूरत नहीं, आप अभी रहने दो, बेस्ट सलाह मिली है, यही वर मांगना है कि मेरे राज्य में जितने भी लोग हैं वो जो भी इच्छा करे वो पूरी हो। तो राजा गया साधु के पास कि देखिए आप मुझे ऐसा वर दीजिए। राजा का कर्तव्य होता है कि वो अपनी प्रजा को अच्छी तरह से रखे, सुखी रखे, खुशहाल रखे। तो मैं ये चाहता हूं कि मेरी प्रजा जो है जो भी वर मांगे वो पूरा हो जाए। तो साधु ने बोला ठीक है तथास्तु, आप जैसा चाहेंगे वैसा होगा। फिर क्या हुआ? फिर वही हुआ, जो भी अपनी इच्छा प्रकट करता था वो इच्छा पूरी हो जाती थी। कोई बोलता था ठीक है मेरा घर में एक बड़ा बंगलो हो जाए, बंगलो हो जाता था। कोई बोले मेरे को सुंदर पत्नी मिले, सुंदर पत्नी उसको मिल गई नहीं। कोई मिले मैं सोने का जो भंडार है वो भर जाए। सब तरह की इच्छाएं उनकी पूरे होने लगी। तो संपन्नता आ गई, लेकिन जब संपन्नता आती है और संपन्नता आने के बाद अगर वो रेगुलेट नहीं होती है तो उसके दुष्परिणाम सामने आते हैं। तो जैसी संपन्नता आने लगी लोग एकदम मदमस्त होने लगे। और किसी ने देखा कि अरे इसकी बीवी तो मेरे बीवी से भी सुंदर है, तो उसकी ईर्ष्या होने लगी उससे। तो उसके देश स्वरूप उसकी इच्छा करने लगे, माँ इसकी बीवी कानी हो जाए या यही अंधा हो जाए। फिर ऐसे एक दूसरे के प्रति द्वेष से भर गए वो प्रजाजन। और फिर वो होने लगा जिसकी राजा ने कभी इच्छा भी व्यक्त नहीं की थी कि ऐसा होगा। तो सब एक दूसरे के खिलाफ द्वेष करने लगे और वो राज्य रहने के काबिल भी नहीं रहा और राजा खुद राज्य छोड़ के जाने लगा। तो राज्य के बाहर जाते जाते उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति है, वो खेती में हल जोत रहा है और खेती कर रहा है। तो गया उसके पास दौड़े दौड़े, बोले मेरे प्रजाजनों ने तो सब खेती बेती करना छोड़ दिया, उनको तो जो चाहिए वो सब मिल रहा था बैठे बैठे, आप क्यों यहाँ पे खेती कर रहे हैं, आप भी आपकी इच्छा मांगो। बोले नहीं, बस कर्म मेरे हाथ में है, कर्म करना, क्या देना नहीं देना ये भगवान के हाथ में है। अगर मैं ही ऐसी अपनी इच्छाएं पूरी करता हूं तो उसमें मतलब क्या है। बोले उसमें से मदमत्ता छा जाती है, उन्माद माद आता है उससे। तो खाली कर्म करना हमारे हाथ में है, न देना न देना। एक होता है देखिए, जब इसी चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में जब अर्जुन भगवान को कहते हैं, वो पांचवा रीजन जब बताते हैं युद्ध न करने का, उसमें बोलते हैं कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छामिताम सर्वधर्मूढ चेता, है ना, यस यशेष शातम यश्रेयश्चानितं ब्रूहितन्मे शिष्यस्तेऽहं शादिमां तृपन्वम्। तो उसमें अर्जुन बोलते हैं कि जो मुझे श्रेयस्कर हो वो मुझे आप बताएं। एक होता है श्रेयस और एक होता है प्रेयस। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन श्रेयस एंड प्रेयस? श्रेयस उसको बोलते हैं कि जो हमारे लिए अच्छा हो, और प्रेयस उसको बोलते हैं जो मेरे लिए अच्छा हो। तो इसमें डिफरेंस ये है कि सब लोग प्रेयस की तरफ जाते हैं, प्रेयस मार्ग में जाना चाहते हैं, श्रेयस मार्ग कोई नहीं चाहता। सब लोग चाहते कि जो मुझे अच्छा लगे वो चाहिए, लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि जो मेरे लिए अच्छा हो वो मुझे दो। भगवान को आप जो भी मांगो तो बोलते हो कि जो ये मेरे लिए ये अच्छा है ये करो, ये मुझे लगता है अच्छा, ये ऐसा होना चाहिए ऐसा करो। लेकिन कोई भी प्रार्थना में ये नहीं बोलता कि आप जो मेरे लिए अच्छा समझते हो वो करो, वो कोई नहीं बोलता है। और यही गलती हो जाती है। ये जरूरी नहीं है कि जो मुझे अच्छा लगता है मेरे लिए वो मेरे लिए सच में अच्छा ही हो। इसलिए भगवान से हमेशा ये प्रार्थना करनी चाहिए कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर है वो मुझे आप दो। बोलते हैं ना तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, बस तेरी मर्जी पूर्ण हो मेरी यार। हमें प्रार्थनाएं भी नहीं आती मांगनी। इसलिए श्रेयस मार्ग को हमें स्वीकारना चाहिए। आजकल की अंधी दौड़ में लोग चलते हैं, पहले बंदा साइकिल पे होता है, साइकिल चलते चलते बाजू वालों को देखता है कि उसने मोटरसाइकिल खरीद ली, फिर ये और गधा मेहनत करता है मोटरसाइकिल खरीदता है, फिर बाजू वाला फोर व्हीलर खरीद लेता है, फिर ये और सोचता है नहीं मेरे पास भी फोर व्हीलर होनी चाहिए, सुबह दिन रात मेहनत करता है बेचारा, फोर व्हीलर ले लेता है, फिर देखता है कि उसका बंगलो हो गया है, बोलता है ठीक है मेरा उससे भी बड़ा हो जाए, दिन रात मेहनत करता है बंगलो भी हो जाता है। सब जिंदगी ऐसी चली जाती है, सामने वाला क्या कर रहा है उससे ज़्यादा मेरे को चाहिए। फिर बुढ़ापा आता है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर बोलता है अभी आप फोर व्हीलर में बैठ के कहीं आना जाना छोड़ दो, आपको साइकिलिंग करनी चाहिए, आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, आपकी हेल्थ के लिए साइकिलिंग अच्छी है। शुरू कहाँ से किया था, आया कहाँ पे, तो एक गधा मेहनत किस लिए फिर बीच में। अंधी दौड़ चल रही है दुनिया में, जो रैट रेस बोलते हैं ना, पता नहीं है कहां जाना है, सुबह उठो काम को जाओ, शाम को घर आओ खाओ पियो सो जाओ। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भागवतम में, निद्रया ह्यते नक्तम व्यवा एन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। ऐसे वीरशालो गृहस्थ गृहमेधी का जीवन रात्रि में या तो सोने में या मैथुन में रत होने तथा दिन में धन कमाने में या परिवार के सदस्य के भरण पोषण में बीतता है। और उसके आगे के श्लोक में कहते हैं, देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्यश्व सत्सस्वे अपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। आत्मतत्व से विहीन व्यक्ति जीवन की समस्याओं के विषय में जिज्ञासा नहीं करते, क्योंकि वे शरीर बच्चे तथा पत्नी रूपी विनाशोन्मुख सैनिकों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। पर्याप्त अनुभवी होने के बावजूद भी वे अवश्यंभावी विनाश यानी मृत्यु को नहीं देख पाते। तो यही इस संसार की सच्चाई है। इस संसार में जो क्या बोलते हैं उसको, संस्कार, संसार का जो मूल बोध बताया गया है ना, वो भागवतम में बताया गया है, और ऋषभ देव उसमें बताते हैं, पुंसाम स्त्रिया मिथुनी भाव में तम तयोर मिथो हृदय गंथि माहुर अतो गृह क्षेत्र सप्ताति वित्तेर जनस्य मोहयम अहम ममेति। इस भौतिक संसार में आकर्षण का मूल कारण है स्त्री और पुरुष के तथा के बीच का आकर्षण। इस भ्रांत धारणा जिसके फलस्वरूप स्त्री तथा पुरुष के हृदय परस्पर जुड़े रहते हैं, मनुष्य अपने शरीर घर संतान स्वजन तथा धन के प्रति आकृष्ट होता है। इस प्रकार वह जीवन के मोह को बढ़ाता है और मैं तथा मैं के मेरा के संदर्भ में सोचता रहता है, हमेशा मैं और मेरा, मैं और मेरा। एक कथा मुझे याद आती है कि एक राजा था, उसकी चार पत्नियां थी। पहली पत्नी जो थी, उस पत्नी को वो कुछ भी मांगे ला के देता था, कुछ भी मांगे, एनी हाउ, कहीं से भी, चांद तारे भी मांगे तो ला के देता था। दूसरी उसकी वाइफ थी, उसके पास वो अपना हृदय खोल के देता था, हमने हमारा हृदय शेयर करता था, जो भी बात है वो शेयर करता था, कभी कुछ नहीं छुपाता था। और तीसरी पत्नी उसकी बहुत सुंदर थी दिखने में, तो कहीं आता जाता था तो उसको साथ में लेके जाता था कहीं। और चौथी जो पत्नी थी वो बेचारी बहुत उस राजा की सेवा करती थी, लेकिन राजा उसकी तरफ कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, लेकिन राजा की सेवा में हमेशा रहती थी, हमेशा राजा के साथ, कुछ भी बोले राजा की सेवा में तत्पर रहती थी। तो कुछ दिन बीत गए तो राजा ना बीमार पड़ गया, और वैद्य ने बोल दिया कि आप कुछ ही दिनों के मेहमान हो। तो राजा बड़ी चिंता में आ गया, तो राजा ने पहली पत्नी को बुलाया, देखो तुमने जिंदगी भर जो भी मांगा मैं तुम्हें ला के दिया, अभी मैं कुछ मांगू तो दोगी। बोले क्या, बोले मैं अभी तो जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ अंतिम यात्रा पे चलोगी। तो पत्नी ने बोला नहीं, जैसे ही तुम शरीर छोड़ दोगे वैसे तुम्हारा और मेरा संबंध समाप्त हो गया। राजा बड़ा दुखी हो गया, कि हाय इसके लिए मैं क्या क्या नहीं किया, जो मांगो आधी रात में मांगे थे तो मैं ला के देता था, लेकिन ये अभी मेरे साथ आने को तैयार नहीं है। बोला ठीक है कोई बात नहीं, दूसरी पत्नी को पूछते हैं। तो राजा ने दूसरी पत्नी को पूछा, देखो मैं तुमसे कोई बात नहीं छुपाया, हर बात तुमको बताया हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी अंतिम यात्रा पे? तो पत्नी बोली, नहीं मैं खाली स्मशान तक आ सकती हूँ, उसके बाद आपकी बॉडी जब जल जाएगी आपका और मेरा संबंध नहीं रहेगा। राजा बड़ा दुखी हो गया, बोला देखो मैं अपना हार्ट उसको शेयर करता था और ये भी मेरी बातों को मेरे दिल को नहीं समझ पाई। फिर राजा तीसरी पत्नी को बुलाया, तीसरी पत्नी को पूछा, देखो मैं तुम्हें हर जगह घुमाने लेके जाता था, अभी भी मैं एक जगह जा रहा हूँ अंतिम यात्रा में, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? वो बोली, नहीं देखो जैसे ही तुम शरीर छोड़ दोगे मैं किसी और की हो जाऊंगी। राजा को बड़ा सदमा पहुंचा, अरे रावण ये किससे मैं मोहब्बत कर बैठा जिसको घुमाने लेके जाता था, वो बोले मैं किसी और की हो जाऊंगी। और जो चौथी थी उसको तो कुछ पूछा ही नहीं, बोले इसको तरफ तो ध्यान भी नहीं दिया, इसको क्या पूछना। तो उसको पूछा कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो बोला हाँ मैं चलने के लिए तैयार हूँ। तो राजा बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो चार पत्नियां हैं ये है हमारे, पहली पत्नी है हमारा शरीर, जो शरीर हम त्याग देते हैं तो शरीर जल जाता है, छूट जाता है। दूसरी पत्नी है हमारे रिलेटिव, जिनको हम शेयर करते हैं, हमारे जो दिल शेयर करते हैं वो खाली स्मशान तक आते हैं, उसके बाद हम भी भूल जाते हैं। तीसरी पत्नी हमारी संपत्ति, हमारी संपत्ति हम सबको दिखाना चाहते हैं हर जगह, लेकिन जैसे ही वो पत्नी बोलती है तुम मर जाओ किसी और की हो जाएंगे, वैसे हमारी संपत्ति किसी और की हो जाएगी। और जो पांचवी पत्नी और प्रतिमा ग्रह है परमात्मा, जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं लेकिन हम उनकी तरफ कभी ध्यान नहीं देते हैं। तो ये मनुष्य शरीर जो हमें प्राप्त हुआ है तो इंद्रियों को संयम करने के लिए, और इंद्रियों का संयम कर सकते हैं हम भगवान को, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने से। तो भगवान की सेवा में कैसे लगाएंगे? तो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कीजिए अपने वाणी से, कानों से हरि कथा सुनिए, और अपने हाथों का इस्तेमाल कीजिए भगवान के मंदिर को साफ करने के लिए, और अपने पैरों का इस्तेमाल किए भगवान के धाम जाने के लिए, भगवान के मंदिर जाने के लिए, धाम यात्रा करने के लिए, और अपने कानों का उपयोग कीजिए भगवान की कथा सुनने के लिए। इस तरह आप अपनी इंद्रिया अगर भगवान की सेवा में लगाओगे तो निश्चित ही आपकी इंद्रिया आपके कंट्रोल में रहेगी और आप सुख का आनंद प्राप्त करेंगे। ठीक है, अभी आप दर्शन का आनंद लीजिए। हरे कृष्णा।